नमस्कार, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय श्रोताओ, इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से दूसरी पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है निर्गमन। हम आशा करते हैं कि इस पुस्तक से आपको आत्मिक लाभ मिलेगा। तो आइए, अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले आइए सुने ये मधुर गीत।
ये प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आपको मेरा नमस्कार मिले। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब इन दिनों प्रभु के वचन के अध्ययन के द्वारा अपने जीवन में अवश्य ही लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मैं यह भी आशा करता हूँ कि आप सब प्रभु के जीवित वचन की उन महान सच्चाइयों को जान और सीख रहे हैं जो हमें पवित्र शास्त्र सिखाती है। मैं अपने नए मित्रों को बता दूं कि इन दिनों हम पवित्र बाइबल के पुराने नियम के पुस्तक में से निर्गमन की पुस्तक से अपना अध्ययन कर रहे हैं और अब तक हमने 4 अध्याय तक का अध्ययन समाप्त कर लिया है। पिछले अध्ययनों में हमने बहुत ही खास विषयों पर विचार किया और नई नई बातों को सीखा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने इन मुख्य विषयों पर विचार कर लिया है। अध्याय 1 में हमने देखा कि इसराइलियों का मिस्र में होना, एक नया फिरौन का आना, इसराइलियों का बंधुआई में होना और सताया जाना, और 2 औरतों की वीरता। इन्हीं विषयों के साथ हमने अध्याय 1 का समापन किया था और 2 अध्याय में हमने देखा कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए एक छुड़ाने वाले को तैयार करते हैं। मूसा का जन्म होता है और मूसा के पहले 40 वर्ष फिरौन के राजमहल में, तब मूसा अपने लोगों के साथ शामिल होते हैं परंतु इसराइली उसे अस्वीकार कर देते हैं। तब आगे हम देखते हैं कि मूसा अन्य जाति की स्त्री से विवाह करता है। इसी प्रकार से हमने अपने 2 अध्याय को भी समाप्त किया। तब हमने 3 अध्याय में कुछ मुख्य विषयों पर विचार किया जिसमें हमने इन विषयों पर मनन किया था। मूसा की बुलाहट, जलती हुई झाड़ी, मैं हूं का प्रकाश करना जो यहोवा है, और छुटकारे का पवित्र वायदा, परमेश्वर की बुलाहट को मूसा द्वारा स्वीकार करने से हिचकिचाना और तब मूसा का नियुक्त होना। मित्रों, इस तरह हमने अध्याय 3 में भी महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी प्राप्त की कि किस तरह परमेश्वर मूसा के द्वारा अपने छुटकारे के काम को आगे बढ़ा रहे थे। तब हमने अध्याय 4 में भी कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर विचार किया था जिसमें हमने देखा था कि इसराइलियों को मिस्र देश से निकालने के लिए मूसा की 2 रुकावटें, इसराइल का अविश्वास और उसके बातचीत करने में निपुण न होना। परंतु परमेश्वर ने मूसा के इन रुकावटों का उत्तर 2 चिन्ह के द्वारा से दिया। पहला, एक लाठी जो सामर्थ्य परमेश्वर के हाथ के द्वारा प्रयोग किया गया, और दूसरा मूसा का कोढ़ी हाथ जो एक पाप को दर्शाता है और परमेश्वर के द्वारा शुद्ध किया जाना, उसके सामर्थ को दर्शाता है जो उसमें बने रहते हैं। मित्रों, हारून मूसा का प्रवक्ता बनता है, मूसा फिर से मिस्र में लौटता है और परमेश्वर की योजना को इसराइल के अगुओं को बताता है जो उनको मिस्र से छुड़ाने के बारे में था। इस प्रकार से हमने अध्याय 4 में उपरोक्त विषयों का अध्ययन किया और मैं विश्वास करता हूं कि आपको इस अध्ययन के द्वारा अवश्य ही आत्मिक ज्ञान व लाभ प्राप्त हुआ है, अर्थात अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों से नई नई बातों को सीखा है जो आपके आत्मिक जीवन के लिए लाभकारी है। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने 10 विपत्तियों में से 5 विपत्तियों को संक्षिप्त में देखा था और आज हम उससे आगे की विपत्तियों का सारांश संक्षिप्त रूप में देखेंगे। तो आइए हम 6वें विपत्ति से आरंभ करें। 6वां विपत्ति, फोड़ा और फफोलों का निकलना, जिसे हम निर्गमन की पुस्तक 9 अध्याय उसके 8 पद से लेकर के 17 पद में पढ़ते हैं। मित्रों, मिस्र में सभी धर्मी पुजारियों या पुरोहितों को शरीर में दाग रहित होना चाहिए था। उनके शरीर में किसी प्रकार का दाग नहीं होना चाहिए था ताकि वे मंदिर में विधि विधान चला सकें। लेकिन पुरोहितों और पुजारियों के शरीर में फोड़े और फफोले होने के कारण उन दिनों मिस्र की उपासना में विलम्ब हो रही थी। कोई भी पुजारी या पुरोहित कहीं पर भी उपासना के काम नहीं कर सका क्योंकि सबके शरीर में दाग थे। वास्तव में यह संपूर्ण मिस्र के धर्मों पर न्याय था। अब अगला महामारी को हम देखते हैं, 7वां महामारी, ओली की विपत्ति, जिसे हम निर्गमन की पुस्तक 9 अध्याय उसके 18 से 35 पद में पाते हैं। मित्रों, परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन ओली की विपत्ति के साथ आकाश के देवताओं के ऊपर किया जो अपने प्रभाव क्षेत्र में ही सामर्थ्यहीन थे। तब हम 8वां विपत्ति, टिड्डियों की विपत्ति, जिसे हम निर्गमन 10 अध्याय उसके 1 से 20 पद में पढ़ते हैं। मित्रों, यह टिड्डियों का न्याय मिस्र के कीड़ों के देवताओं के विरोध में था। टिड्डियों की विपत्ति का मतलब हुआ कि वहां की फसल को शापित किया जाना और परमेश्वर के इस न्याय का प्रमाण योएल और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी हमें मिलता है। तब हम 9वां विपत्ति, अंधेरा की विपत्ति, जिसे हम 10 अध्याय उसके 21 से 29 पद में पाते हैं। परमेश्वर सूर्य देवता रा के विरोध में अंधेरे के साथ में प्रवेश करते हैं। रा जो मुख्य देवता था और उसकी आराधना की जाती थी, और मिस्र में सूर्य की चक्री के चिन्ह मिस्र शासन काल में बहुतायत से प्रचलित थे, अर्थात पाए जाते थे। यहाँ पर अंधेरा की विपत्ति सूर्य देवता रा की असहायतापन को दर्शाती है। और आखिरी विपत्ति जो दसवां विपत्ति है, पहलौठों का मरना, निर्गमन की पुस्तक 11 अध्याय से लेकर 12 अध्याय के 36 पद तक। मित्रों, मिस्र के धर्म के अनुसार पहलौठे या पहले बच्चे मिस्र के देवता के लिए होते थे। दूसरे शब्दों में कहें कि परमेश्वर ने उसे ले लिया जिसे मिस्र के देवताओं के लिए अलग किया गया था। परमेश्वर मिस्रियों को सिखा रहे थे कि वह कौन है। वह फिरौन को मनवा रहे थे कि वह परमेश्वर है, और वह अपने लोगों को उस स्थान पर लाने जा रहे थे जहां पर वे उसे अपने परमेश्वर के रूप में स्वीकार करने जा रहे हैं। और यह न्याय का अंतिम कार्य है जो इसराइलियों को मिस्र की बंधुआई से या गुलामी से स्वतंत्र करेगा। मित्रों, इसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि इस विपत्ति के पीछे एक विशेष उद्देश्य था। परमेश्वर ने मिस्र के देवताओं को चुनौती दी, अर्थात एक प्रतियोगिता के द्वारा चुनौती दी, और उसने उन्हें पराजित कर दिया। अब मिस्र में पाए जाने वाले मूर्ति पूजा की कल्पना कर सकते हैं जो वहां पर थी। फिर भी परमेश्वर ने यसाया भविष्यवक्ता के द्वारा भविष्यवाणी करवाई कि एक दिन आएगा और जब मिस्र की सभी मूर्तियां मिस्र से गायब हो जाएंगी, अर्थात मूर्तियां नहीं रहेंगी। और आज मिस्र एक इस्लाम देश है जहां पर मूर्तियों के लिए स्थान नहीं है। सभी मूर्तियां वहां हटा ली गई हैं, जैसा कि परमेश्वर ने कहा था, और वह बात पूरी हो गई है। आगे हम देखते हैं मूसा इसराइलियों के छुटकारे के लिए निवेदन करते हैं। मित्रों, निर्गमन का 5वां अध्याय फिरौन के साथ प्रतियोगिता और मिस्र के देवताओं के साथ युद्ध के साथ आरंभ होता है। हम निर्गमन 5 अध्याय उसके 1 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इसराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। मित्रों, परमेश्वर के लिए जंगल में बलिदान चढ़ाना ही इसराइलियों के लिए छुटकारे के पहला कदम था। मूसा और हारून फिरौन के पास जाकर उससे यह कहने के लिए उतावले या जल्दबाजी नहीं किए कि मेरे लोगों को जाने दे, अब हम मिस्र देश छोड़कर वायदे के देश में जा रहे हैं। पर उन्होंने जाकर सिर्फ निवेदन किया कि इसराइलियों को जंगल में जाकर अपने परमेश्वर की आराधना करने दे। वे फिरौन को नम्र कर उसे तैयार कर रहे थे जो अंततः उसके ऊपर आने वाला था। अब फिरौन की प्रतिक्रिया पर ध्यान दीजिए, जिसे हम निर्गमन 5 अध्याय के 2 पद में पढ़ते हैं। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इसराइलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इसराइलियों को भी जाने नहीं दूंगा। इस दृश्य में मेरे लोगों को जाने दे के भाव को अधिक प्रसिद्ध किया गया है। मेरी इच्छा है कि हम भी यह प्रश्न बना पाते या पूछ पाते कि कौन सा परमेश्वर प्रसिद्ध है। यह वास्तव में एक बेहद ही सुंदर प्रश्न होगा, विशेषकर आज के दिनों के लिए, क्योंकि आपको उसे जानना है इससे पहले कि आपके लिए कोई छुटकारा हो। फिरौन ने 2 मुख्य बातों को कहा, पहला, मैं यहोवा को नहीं जानता, और दूसरा, मैं इसराइलियों को नहीं जाने दूंगा। लेकिन थोड़े समय के बाद फिरौन इसराइल के परमेश्वर को जान लेगा, और वह भी एक भयानक तरीके से, और वह इसराइलियों को जाने देगा। हम निर्गमन की पुस्तक 5 अध्याय उसके 3 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, उन्होंने कहा, इब्रियों के परमेश्वर ने हमसे भेंट की है, सो हमें जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करें, ऐसा न हो कि वह हम में मरी फैलाए व तलवार चलवाए। मित्रों, परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी उपासना करें। यदि हम अभी यह कदम नहीं उठाते हैं तो वह हमारा न्याय करेंगे। हम निर्गमन 5 अध्याय उसके 4 और 5 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, मिस्र के राजा ने उनसे कहा, हे मूसा, हे हारून, तुम क्यों लोगों से काम छुड़वाना चाहते हो? तुम जाकर अपने अपने बोझ को उठाओ। और फिरौन ने कहा, सुनो, इस देश में वे लोग बहुत हो गए हैं, फिर तुम उनको परिश्रम से विश्राम दिलाना चाहते हो। मित्रों, मूसा अपने लोगों के साथ में एक सभा किया, जिसमें उन्होंने प्रकट किया कि वे अशांति में हैं और मिस्र छोड़कर जाना चाहते हैं। यह समस्या फिरौन के पास पहुंचाई गई और उसने इसे देखा भी, परंतु उसके उत्तर में उसने उन्हें ईंट के भट्ठे में काम करने के लिए वापस भेज दिया। उसने वास्तव में यही काम किया, और यहाँ तक कि उसने उनके दुखों व सताव को और अधिक बढ़ा दिया, वह भी उसी समय। आगे हम देखते हैं इसराइलियों पर बोझ बढ़ाना। निर्गमन की पुस्तक 5 अध्याय उसके 6-8 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, और फिरौन ने उसी दिन उन परिश्रम करने वालों को जो उन लोगों के ऊपर थे और उनके सरदारों को यह आज्ञा दी कि तुम जो अब ईंट बनाने के लिए लोगों को पुआल दिया करते थे, सो आगे को न देना, वे आप ही जाकर अपने लिए पुआल इकट्ठा करें। तो भी जितने ईंट अब वे बनाते हैं उतने ही आगे को भी उनसे बनवाना। ईंटों की गिनती कुछ भी न घटाना, क्योंकि वे आलसी हैं, इस कारण यह कहकर चिल्लाते हैं कि हम जाकर अपने परमेश्वर के लिए बलिदान करें। मित्रों, फिरौन ने सोचा कि इसराइली छुट्टी मांग रहे हैं। उसने सोचा कि यदि ये थोड़े दिन के लिए चले गए तो वापस आकर उतना अधिक मेहनत करना नहीं चाहेंगे, इसलिए उसने उन्हें जाने नहीं दिया और उन्हें भूसी देना बंद कर दिया और उन पर दबाव दिया जाने लगा कि वे पहले की तरह ही ईंट बनाएं और भूसी भी स्वयं से इकट्ठा करें। उनके लक्ष्य प्रतिदिन बढ़ाते गए, इसलिए वे शव की तरह काम करते रहे या कड़ाई के साथ काम किए। हम निर्गमन की पुस्तक 5 अध्याय उसके 15 से 21 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, तब इसराइलियों के सरदारों ने जाकर फिरौन की दुहाई यह कहकर दी कि तू अपने दासों से ऐसा वर्ताव क्यों करता है, तेरे दासों को पुआल तो दिया ही नहीं जाता और वे हमसे कहते रहते हैं ईंटे बनाओ ईंटे बनाओ, और तेरे दासों ने भी मार खाई है, परंतु दोष तेरे ही लोगों का है। फिरौन ने कहा, तुम आलसी हो आलसी, इसी कारण कहते हो कि हमें यहोवा के लिए बलिदान करने को जाने दे, और अब जाकर अपना काम करो और पुआल तुमको नहीं दिया जाएगा, परंतु ईंटों की गिनती पूरी करनी पड़ेगी। जब इसराइलियों के सरदारों ने बात सुनी कि उनकी ईंटों की गिनती न घटेगी और प्रतिदिन उतना ही काम पूरा करना पड़ेगा, तब वे जान गए कि उनके दुर्भाग्य के दिन आ गए हैं। जब वे फिरौन के सम्मुख से बाहर निकल आए, तब मूसा और हारून जो उनसे भेंट करने के लिए खड़े थे उन्हें मिले, और उन्होंने मूसा और हारून से कहा, यहोवा तुम पर दृष्टि करके न्याय करे, क्योंकि तुमने हमको फिरौन और उसके कर्मचारियों की दृष्टि में घृणित ठहरवा कर हमें घात करने के लिए उनके हाथ में तलवार दे दी है। मित्रों, इसराइल के संतानों ने मूसा और हारून पर बोझ अधिक बढ़ाने का दोष लगाया। लोगों ने इन दोनों पर सहायता करने के बदले में रुकावट उत्पन्न करने का दोष लगाया, और फिरौन को एक बहाना मिल गया कि वह इनके जीवन को असहनीय और अधिक नरकीय बना दे। आगे हम देखते हैं मूसा की प्रार्थना। निर्गमन की पुस्तक 5 अध्याय उसके 22 पद से 23 पद में हम पढ़ते हैं, तब मूसा ने यहोवा के पास लौटकर कहा, हे प्रभु, तूने इस प्रजा के साथ ऐसी बुराई क्यों की और तूने मुझे यहाँ क्यों भेजा? जब से मैं तेरे नाम से फिरौन के पास बातें करने के लिए गया, तब से उसने इस प्रजा के साथ बुरा ही व्यवहार किया है और तूने अपनी प्रजा का कुछ भी छुटकारा नहीं किया। यहाँ पर मूसा बेचैन है और वह परमेश्वर से शिकायत करता है कि मैं यहाँ पर आपके आज्ञा अनुसार उन लोगों को छुड़ाने आया था, लेकिन उन्हें छोड़ने के बदले में फिरौन ने इसराइलियों के जीवन को और अधिक कठिन बना दिया है। मूसा संपूर्ण दृश्य को नहीं देख सका, परंतु परमेश्वर धीरे धीरे बढ़ रहे थे और धीरज के साथ भी, जो उसके कार्य करने का तरीका है। अध्याय 6 में परमेश्वर मूसा को उत्साहित करते हैं और इसराइल के संतानों को भी, और उन्हें छुड़ाने के वायदा को पुनः ताजा करते हैं। परमेश्वर के पास अभी भी मूसा को, इसराइलियों को, मिस्रियों को और फिरौन को सिखाने के लिए बहुत कुछ है। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 5 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 6 से जारी रखेंगे, और इस अध्याय में हम इन मुख्य विषयों पर चर्चा करेंगे, यहोवा का मूसा की प्रार्थना का उत्तर देना, इसराइल का एक अधूरा वंशावली और मूसा की आज्ञा का नवीनीकरण होना। मित्रों, अध्याय 6 पिछले अध्याय का ही क्रमागत है। मिस्रियों के ऊपर विपत्तियों का आना अभी निकट है, देवताओं का युद्ध या संघर्ष बस शुरू ही होने वाली है। कौन सी चीज इस स्थान तक ला पहुंचाई है? अनुदर्शन में हम पाते हैं कि सबसे पहले मूसा, हारून और प्राचीन लोग फिरौन के पास जाकर 3 दिन के लिए जंगल में जाकर अपने परमेश्वर के लिए बलिदान और आराधना करने की अनुमति मांगते हैं, और फिरौन का उत्तर था नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर को नहीं जानता था, और तब उसने इसराइलों के ऊपर बोझ व सताव को अधिक बढ़वा दिया। इसराइल के संतानों ने मूसा से शिकायत की और उसकी तरफ से मूसा ने भी परमेश्वर से शिकायत की। परमेश्वर मूसा को निश्चित कराना चाहते हैं कि वह कौन थे और वह क्या करने जा रहे हैं। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर ने इसराइलियों की दुहाई को सुना है और वह उन्हें छुटकारा देने जा रहे हैं। परमेश्वर मूसा से चाहते थे कि वह पिछले इतिहास को देखे कि उसने किस प्रकार इसराइलियों को रखा। परमेश्वर ने समय समय पर इसराइलियों के प्रति अपने प्रेम का प्रदर्शन किया और उनकी सहायता करने की इच्छा को व्यक्त किया। परमेश्वर कई बार उनकी तरफ से हस्तक्षेप किया। आज भी परमेश्वर हमारी ओर से हस्तक्षेप करते हैं। मुझे निश्चय है कि वह मेरे लिए है, और हो सकता है कि आपके जीवन में परमेश्वर के कार्य के प्रति आप सुनिश्चित नहीं हैं। फिलिपियों के पत्री 1 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। मित्रों, आज परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानते हैं, वह हमारी निराशाजनक परिस्थिति को जानते हैं। वह जिस प्रकार मिस्र में इसराइलियों की सहायता किए उसी प्रकार हमारी भी सहायता कर सकते हैं और सहायता करना चाहते हैं। आगे हम देखते हैं मूसा की प्रार्थना पर यहोवा का उत्तर। यहोवा जो स्वयं अस्तित्व में है मूसा से बातें करते हैं और उसे उत्साहित करते हैं, आशा और भरोसा दिलाते हैं। हम निर्गमन की पुस्तक 6 अध्याय उसके 1 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा कि मैं फिरौन से क्या करूंगा जिससे वह उनको बरबस निकालेगा, वह तो उन्हें अपने देश से बरबस निकाल देगा। मित्रों, यहोवा मूसा से कह रहे हैं कि वही प्रभु हैं और उसे भविष्य के लिए कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है, वह स्वयं से अस्तित्व में है और किसी भी चीज को सुरक्षित रखने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर सृष्टि के किसी भी वस्तु पर निर्भर नहीं है, वह किसी का सहारा नहीं लेते हैं, परंतु सारी सृष्टि उसका सहारा लेती है और परमेश्वर चाहते हैं कि मूसा भी उसका सहारा ले। हम निर्गमन की पुस्तक 6 अध्याय उसके 2 पद से 5 पद में पढ़ते हैं, और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं यहोवा हूं, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से इब्राहिम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट न हुआ, और मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की, अर्थात कनान देश जिसमें वे परदेशी होकर रहते थे उसे उन्हें दे दूं, और इसराइली जिन्हें मिस्री लोग दासत्व में रखते हैं उनका कराहना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। मित्रों, यहाँ पर परमेश्वर मूसा से कह रहे हैं कि वह इब्राहिम, इसहाक और याकूब को दर्शन दे चुके हैं, लेकिन यहोवा के जैसे नहीं, यहोवा के जैसे परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाने जा रहे हैं, जिसे वह अपनाने और गुलामी की बंधुआई से छुड़ाने जा रहे हैं और उन्हें वायदा किए हुए देश में ले जाएंगे। इन सारी बातों के द्वारा वे परमेश्वर को यहोवा के नाम से जान लेंगे, और जिस भाग को उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब को कभी भी प्रकट नहीं किया था उसे वह प्रकट करेंगे। मित्रों, हमें पद 6 से 8 में परमेश्वर छुटकारे के 7 बातों को बताते हैं जिसमें मैं करूंगा को प्रकट करते हैं। ये पद आज हमारे लिए एक सुंदर तस्वीर को दर्शाते हैं, और उन दिनों में ये मूसा के लिए बहुत उत्साह के कारण बने थे। परमेश्वर घोषणा करते हैं कि वह कौन है और वे क्या करने जा रहे हैं। आज हमारे पास भी एक मुक्तिदाता है जो हमें बताते हैं कि वह कौन है और वे क्या करने जा रहे हैं। वह पृथ्वी के सभी लोगों को बचाने व उद्धार देने में सक्षम है, उन लोगों के लिए जो उसके पास आते हैं। जी हाँ, जो उसके पास आते हैं वह उन्हें कभी भी नहीं निकालते हैं, क्योंकि वे सचमुच में उद्धार करता है और आपको भी आपके पापों से क्षमा कर अनंत जीवन दे सकते हैं, यदि आप अपने पापों के लिए क्षमा मांगे और उसे स्वीकार करें तब। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आप अवश्य ही एक निर्णय अपने जीवन में लेंगे और उद्धार का आनंद प्राप्त करेंगे। मित्रों, आज हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है, और मैं आशा करता हूं कि आप सब इस अध्ययन के द्वारा अवश्य ही लाभ प्राप्त कर रहे हैं और अपने आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार प्रभु के वचन की संगति में बने रहें और उसके आशीषों को प्राप्त करते रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे।
यीशु तुम्हें अपने दिल में बसाया है, दिल में बसा के तुझको अपना बनाया है। यीशु तुम्हें अपने दिल में बसाया है, दिल में बसा के तुझको अपना बनाया है। इतनी दे शक्ति हमें ना डगमगाए, तेरे वचन पे सदा चलते रहे। इतनी दे शक्ति हमें ना डगमगाए, तेरे वचन पे बसाया है, दिल में बसा के तुझको अपना बनाया है। तू रहे मन में हमेशा, पाप न हो हमसे। तेरी ये नेक मूरत यूं ही रहे दिल में सदा, तू रहे मन में हमेशा, पाप न हो हमसे। अपने दिल में बसाया है, दिल में बसा के तुझको अपना बनाया है। यीशु तुम्हें अपने दिल में बसाया है, दिल में बसा के तुझको अपना बनाया है।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
यीशु तू है एक सच्चा साथी, सच्चाई है तेरा मार्ग। यीशु तू है एक सच्चा साथी, सच्चाई है तेरा मार्ग। राह पर जो कदम हम रखें, मिलता है तेरा प्यार। तेरा प्यार अनोखा, उसमें जो डूबा होता है उसका उद्धार। यीशु तू है एक सच्चा साथी, सच्चाई है तेरा मार्ग। तेरे खून की धारा हमको सुनाए तेरा गहरा प्यार। तेरे खून में मेरा पाप डूबा, तेरा जीवन।